नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए, इससे पूर्व कि हम आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर के कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आप सबका फिर से एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम बाइबल की पुस्तक में से दूसरी इतिहास की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एक राजा जिसका नाम अमस्या था, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, अर्थात परमेश्वर ने उसे दंड दिया क्योंकि उसने उस कार्य को किया जिसे परमेश्वर ने उसे करने के लिए मना किया था। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 25 अध्याय से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरे इतिहास की पुस्तक 25 अध्याय उसके 23 और 24 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब इसराइल के राजा एवास ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआहाज का पोता और एवास का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम के शहरपनाह में से एप्रेमी फाटक के कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया और जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था, उस सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वह शोमरोन को चला गया। मेरे मित्रों, निश्चय ही यह इसराइल के लिए एक आसान विजय थी। यह भविष्यद्वक्ता के वचन की पूर्ति थी कि परमेश्वर ने तेरा नाश करना ठान लिया है क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। मेरे मित्रों, हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 25 अध्याय उसके 27 और 28 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जिस समय अमस्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकीश को भाग गया। सो दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। मेरे मित्रों, यहां पर इस प्रकार से अध्याय 25 का समापन होता है। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय 26 से, उज्जियाह का राज्य। अमस्याह का पुत्र उज्जियाह अपनी किशोर अवस्था में ही राजा बन गया। आइए हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास के पुस्तक 26 अध्याय उसके 1 से 3 पद। लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यकिल्याह था, जो यरूशलेम की थी। मेरे प्रियो, उज्जियाह एक अच्छा राजा था, परंतु असाधारण रूप से अच्छा नहीं। उसके युग में कोई धार्मिक सुधार नहीं हुआ। प्रसंगवश इसी के राज्यकाल में यशाया ने भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की थी। उज्जियाह के मरणोपरांत परमेश्वर ने यशाया को बुलाया था। यशाया 6 अध्याय उसके 1 पद में यही कहता है, हम देख चुके हैं कि उसकी या उत्तरी राज्य इसराइल में एक भी अच्छा राजा नहीं था, एक भी नहीं। दक्षिणी राज्य में कम से कम कुछ अच्छे राजा हुए, परंतु 5 विशेष रूप से विशिष्ट हैं, क्योंकि उनके राज्य काल में सुधार एवं जागृति आई थी। मेरे मित्रों, उज्जियाह के राज में जागृति तो नहीं आई, परंतु वह एक अच्छा राजा था। मेरे बाइबल कॉलेज में बाइबल अध्ययन होता था, उसमें एक प्रश्न पूर्व काल से ही पूछा जा रहा था, इसराइल और यहूदा के राजाओं के नाम लिखो और उनके राज्य का संक्षिप्त वर्णन करो। अब किसी पुराने बुद्धिजीवी विद्यार्थी ने खोज की थी कि यदि आप प्रत्येक के नाम के सामने बुरा राजा लिख देंगे तो आपको 95% अर्थात 95% अंक प्राप्त होंगे, और एक नए विद्यार्थी को इससे अधिक क्या चाहिए। अतः कुछ विद्यार्थियों ने यही किया कि उनके नाम सीखकर उनके आगे प्रत्येक के सामने बुरा राजा लिख दिया। उज्जियाह के आगे भी लिखा बुरा राजा, लिखा तो हमने गलत था, परंतु उज्जियाह असाधारण तो नहीं परंतु अच्छा राजा था। मेरे मित्रों, दूसरे इतिहास के पुस्तक 26 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और जकरियाह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किया रहा। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि यहूदा को फिर से एक अच्छा राजा मिल गया है, उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। आइए हम देखें उज्जियाह की सफलताएं। दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तब उसने जाकर पलिस्तियों से युद्ध किया और गत, यबने और अशदोद की शहरपनाहों को गिरा दिए और अशदोद के आसपास और पलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। जी हाँ, गत नगर पलिस्तियों का दृढ़ नगर था। कुछ समय पूर्व अशदोद का वहां पर कुछ लोगों ने भ्रमण किया, आज वहां व्यापार अपने चरम सीमा पर है क्योंकि उन्होंने वहां बंदरगाह बना दिया है। मेरे मित्रों, प्राचीन काल में जहाज कैसरिया तक आते थे, अशदोद तक नहीं। आज वहां मानव निर्मित एक अद्भुत बंदरगाह है, और मेरे विचार में अन्य बंदरगाहों की तुलना में इसराइल का आयात और निर्यात का माल सबसे अधिक वहीं से होता है। लाल सागर से आने वाली तेल की पाइप रेखाएं वहीं आती है, वह तेल जहाजों में भरकर बाहर भेजा जाता है, वहां सर्वत्र निर्माण कार्य हो रहा है। यह संपूर्ण क्षेत्र उज्जियाह ने जीत कर ले लिया था, और यह प्रदेश पलिस्तियों का था, और सिर्फ इतना ही नहीं उसने और भी लिए। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय उसके 8 से 10 पद में पढ़ते हैं, और अमोनी उज्जियाह को भेंट देने लगे, वरन उसकी कृति मिस्र के सिवानों तक फैल गई क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए, और उसके बहुत जानवर थे इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर और कार्मेल में उसने किसान और दाख की बारियों के माली थे क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। मेरे प्रियो, लिखा है कि वह खेती किसानी करने वाला था, वह पशुपालन पसंद करता था। अशदोद, अस्कलोन और गत, बर्शेबा तक संपूर्ण क्षेत्र बहुत अच्छा चारागाह है। आज वहां पशुपालन, मवेशी और भेड़ पालन के लिए अति उत्तम स्थान है। उज्जियाह ने यही किया। ऊपर कार्मेल क्षेत्र में एस्द्रलोन घाटी है जो दाख के लिए अति उत्तम स्थान है। लिखा है कि राजा उज्जियाह को यह सब बहुत अच्छा लगता था। दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय उसके 11 से 13 पद में हम पढ़ते हैं, फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी जिनकी गिनती येल मुंशी मासेयाह सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे उनकी पूरी गिनती 2600 थी और उनके अधिकार में 3,750,000 की एक बड़ी सेना थी जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। मेरे प्रियो, दक्षिणी राज्य यहूदा का सैन्य बल इस समय महान था। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 26 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे पढ़ते हैं, इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जियाह ने ढाले, भाले, टोप, झीलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुमटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे और उनकी कृति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, प्राचीन युग के युद्ध में चट्टानों को दागने के यंत्र थे, तीर चलाने के भी यंत्र थे, जिनमें मनुष्यों की शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। वे बहुत बड़े धनुष बनाते थे जिससे कि तीर बहुत दूर तक चला जाए। यह बड़ी रोचक बात है कि उज्जियाह इस नए युद्ध पद्धति को आविष्कार किया। मेरे मित्रों, जैसा कि हमने सब राजाओं के जीवन में देखा है, अच्छे राजाओं के भी और उज्जियाह की भी दुर्बलता थी। सब में कोई न कोई दुर्बलता होती है। आज भी मनुष्य की यही दशा है। मनुष्य चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई न कोई दुर्बलता अवश्य होती है। तो आइए देखें उज्जियाह की दुर्बलता। कभी कभी सफलता हमारी सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि इससे हमें घमंड आ जाता है। उज्जियाह के पतन का कारण भी घमंड था। आइए हम पढ़ें दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। मेरे मित्रों, उसने परमेश्वर के मंदिर में वेदी पर धूप जलाने का प्रयास किया। क्या यह अच्छी बात नहीं थी? जी नहीं, उसके लिए यह अनुचित कार्य था। क्यों? आइए हम पढ़ें दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए, और उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं, तो पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। जी हाँ, याजक इस काम से उसे रोक सकते थे। राजा याजक के पद को अधिकार ग्रहण कर रहा था। जो काम वह कर रहा था वह हारून के पुत्रों की अपेक्षा अन्य किसी के लिए भी वर्जित था, अर्थात मनाही थी। केवल हारून के वंशज याजक ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। सोने का दीवट और धूप जलाने की वेदी वहां थी। मेरे प्रियो, दूसरे इतिहास के पुस्तक 26 अध्याय के 19 पद में लिखा है, तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उज्जियाह को परमेश्वर का तत्कालिक दंड मिला। दूसरे इतिहास के पुस्तक 26 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है, तब उन्होंने उसको वहां से झपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की और उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। उज्जियाह के पुत्र को राजकाज देखना पड़ा क्योंकि उज्जियाह आजीवन संगरोग स्थल में रह रहा था। जी हाँ, उसे लोगों के सामने आने की मनाही थी। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास के पुस्तक 26 अध्याय के 22 पद में, आदि से अंत तक उज्जियाह के और कामों का वर्णन तो आमोस के पुत्र यशाया नबी ने लिखा है। मेरे मित्रों, यशाया की भविष्यवाणी में हम पढ़ते हैं कि यशाया ने उज्जियाह की मृत्यु पर अपनी भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की। यशाया नबी की पुस्तक 6:1 में हम इसे देखते हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 26:23 में, निदान उज्जियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह कोढ़ी है और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे प्रियो, उज्जियाह की अंतिम क्रिया आनंद का समय कहा जा सकता है। एक विश्वासी की मृत्यु भय का कारण नहीं होना चाहिए। पौलुस ने थिस्सलुनीकी विश्वासियों से कहा, 1 थिस्सलुनीकियों 4:13 में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिससे जिन्हें आशा नहीं। उसने कुरिन्थ के विश्वासियों को भी लिखा, 1 कुरिन्थियों 15:55 में, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? दफन का समय ऐसा दुख का समय नहीं जैसा वह प्रतीत होता है। मेरे प्रियो, उज्जियाह का दफन दुख का समय नहीं था। क्यों नहीं था? वह एक कोढ़ी था। उज्जियाह एक अच्छा राजा था, परंतु परमेश्वर उसके पाप का भी उल्लेख करता है। उसने याजक के काम में हस्तक्षेप किया था और यही उसका दोष था। उसका स्वाभिमान या अभिमान उसका पाप था। उन्होंने मानवीय रीति से परमेश्वर के पास आने का प्रयास किया, परमेश्वर की रीति से नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि हमें उसकी ही रीति से उसके पास आना होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी हाँ, उज्जियाह अपने ही द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचना चाहता था और परिणाम स्वरूप वह कोढ़ी हो गया। कोढ़ एक भयंकर रोग था। शारीरिक रूप से तो वह भयंकर, मानसिक रूप से भी वह भयंकर था। मेरे प्रियो, कोढ़ हर प्रकार से भयंकर था। उसमें बहुत कष्ट होता था। उज्जियाह की मृत्यु आनंददायक मुक्ति थी। पाप के उपरांत भी वह परमेश्वर का जन था। परमेश्वर ने उसे पाप का दंड दिया। पौलुस ने लिखा है 1 कुरिन्थियों 11:31 में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। जी हाँ, उज्जियाह को परमेश्वर ने यहाँ तो दंड दिया, परंतु वह परमेश्वर का जन स्वर्ग लोक में गया। मेरे मित्रों, असंख्य विश्वासी दुर्बल जीवन शीर्ण देह में असहाय और निराश हैं। उनके लिए एक दिन आनंददायक मुक्ति का समय आएगा। मसीह की उपस्थिति में जाना कैसी आनंद की बात होगी। अतः मृत्यु का दुख नहीं होना चाहिए। मैं कल्पना करता हूँ कि पिता के दफन पर योताम की आंखों में आंसू नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने पिता से प्रेम करता था और जानता था कि उसका पिता उद्धार पा चुका है। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं योताम का राज। योताम एक और राजा है जिसे हम अच्छा राजा कह सकते हैं। यहूदा में लगातार 3 अच्छे राजा हुए, जो एक असामान्य बात है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 26 समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और 27 से अध्ययन जारी रखेंगे। 27:1-2 में हम पढ़ते हैं, जब योताम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी वह यहोवा के मंदिर में न घुसा और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। मेरे मित्रों, इस व्यक्ति के बारे में एक बड़ी रोचक एवं विचित्र बात कही गई है कि वह यहोवा के मंदिर में न घुसा। इसका एक कारण था, जब उसका पिता मंदिर में गया तब वह कोढ़ी हो गया, क्योंकि उसने वर्जित कार्य किया था जिसे उसे नहीं करना था। वह पवित्र स्थान में चला गया। योताम ने यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वही किया, परंतु वह मंदिर में नहीं गया। मेरे प्रियो, आपको निश्चय ही उसे सहानुभूति होगी, परंतु उसने राष्ट्र के लिए गलत उदाहरण रखा। परिणाम स्वरूप प्रजा भी भ्रष्टाचार में रही। वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। इस मनुष्य के पास प्रजा को परमेश्वर की संगति में लाने का एक महान अवसर प्राप्त था, परंतु उसमें यह भय था, संभव था कड़वाहट। उसका पिता मंदिर में जाने के कारण कोढ़ी हुआ था, अतः वह मंदिर में कभी नहीं जाएगा। मेरे मित्रों, आज अनेक विश्वासी ऐसा ही करते हैं। वे विरोध की भावना के कारण परमेश्वर से दूर हैं और दूर हो जाते हैं। मैं अनेक लोगों को जानता हूं जो कड़वाहट के कारण परमेश्वर की आराधना में नहीं जा पाते हैं, या किसी दुखद घटना के कारण जो उनके या उनके परिजनों के साथ वर्षों पूर्व घटी है। जब वे युवा अवस्था में थे, उस समय की बातों को याद रखते हैं। ठीक ऐसा ही योताम के साथ भी हुआ। इसका कारण समझा जा सकता है कि वह क्यों नहीं जाता था। दूसरे इतिहास की पुस्तक 27 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल के शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया। फिर उसने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए और जंगलों में गढ़ और गुम्मट बनाए। मेरे मित्रों, उस युग में घने जंगल थे। आज तो पहाड़ उजाड़ पड़े हैं, तथापि वनीकरण के कारण जंगल फिर उभर रहे हैं। उस युग में वह देश दूध और शहद से पूर्ण था। योताम ने पहाड़ों में गढ़ बनवाए। वह एक महान निर्माता भी था। मेरे विचार में उसी ने परगने बनाना आरंभ किया था। मेरे प्रियो, आइए हम आगे पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक 27 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, और वह अमोनियों के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अमोनियों ने उसको 100 किकार चांदी और 10,000 कोर गेहूं और जौ दिया, और फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया। यों योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। मेरे मित्रों, उसने अपने देश का सैन्य बल बढ़ाया, दृढ़ रखा और अपने पिता के समान चलता रहा। दूसरे इतिहास के पुस्तक 27 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब वह राजा हुआ तब 25 वर्ष का था और वह यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे मित्रों, योताम के विषय में एक संक्षिप्त अध्याय ही यहाँ पर मिलता है। यह युवक एक महान राजा बन सकता था, परंतु कड़वाहट के कारण वह महान राजा बनने और परमेश्वर के लिए महान कार्य करने से रोका गया। अब हम देखते हैं उसकी मृत्यु के पश्चात आहाज का राज होता है, जो उसका पुत्र है। मित्रों, हम जानते हैं कि कभी तो यहूदा को एक बुरा राजा मिलेगा। यह राजा बुरा है। इस समय उत्तरी राज इसराइल बंधुआई की देवड़ी पर अर्थात द्वार पर खड़ा है, और यहूदा आहाज के पाप के कारण गर्त में गिरा हुआ था। आइए हम पढ़ें दूसरे इतिहास के पुस्तक 28 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, लिखा है, जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवा कर बनाई। मेरे मित्रों, आहाज एक बुरा राजा था जिसने इसराइल के राजाओं का मार्ग अपनाया, अर्थात दुराचार का मार्ग। इनका मानना यह था कि दाऊद राजा था और ये सब उस मानक से कम थे। अब हम दक्षिणी राज्य का दुखद भविष्य देखना आरंभ करते हैं। उत्तरी राज्य अशुरों के दासत्व में चला जाएगा। परमेश्वर दक्षिणी राज्य को बार बार चेतावनी देगा, परंतु वे भी दासत्व में जाएंगे, अशुर देश नहीं परंतु बेबीलोन के लिए। दूसरे इतिहास के पुस्तक 28 अध्याय के 3 पद में लिखा है, और हिन्नोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने लड़के वालों को आग में होम कर दिया। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि उसने अपने बच्चों को आग में तपाकर लाल वेदी पर चढ़ाया। वह एक मूर्ति थी जिसे जलाकर लाल किया जाता था कि उसके हाथ में बच्चा रख दे। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, और ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। जी हाँ, आहाज पूरी तरह मूर्ति पूजा में लीन हो गया और दक्षिणी राज्य को भी मूर्ति पूजा में मग्न कर दिया। आगे हम देखते हैं आराम और इसराइल का आक्रमण। दूसरे इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय के 5 पद में लिखा है, इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीतकर उसके बहुत से लोगों को बंधुआ बना के दमिश्क को ले गए और वह इसराइल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि जैसा सदैव हुआ, परमेश्वर अपने राष्ट्र अपनी प्रजा के द्वारा वैरियों के लिए खोल देता है, वे आक्रमण करें। आराम आक्रमण करता है और दक्षिण राज्य की शहरपनाह ढह जाती है। वे बहुतों को बंदी बना करके अपने साथ ले जाते हैं। दुख की बात तो यह है कि उत्तरी राज्य आरामियों का साथ देता है, अतः ये बंदी एक प्रकार से इसराइल के बंदी हुए। इसराइल ने यहूदा वासियों को बंदी बनाया। दूसरे इतिहास के पुस्तक 28 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में 120,000 लोगों को, जब सब के सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इसके कारण को अति स्पष्ट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को जब लोगों ने छोड़ दिया तो परमेश्वर ने उन्हें इसके कारण के साथ उन्हें भी छोड़ दिया। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही नई बातों को सीखा है जो आपकी आत्मिक उन्नति के कारण है। मेरे मित्रों, आइए हम परमेश्वर के निकटता में आए, अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। सारी सृष्टि का तू बादशाह।